नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका देखना और केवल देखते ही रहना, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जब आप कुछ करने की हालत में ना हो या ऐसा मान लेने में फायदा हो, तब देखते रहना ही अच्छा है। हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, हर दिन एक नए रूप में आ जाता है, जिसके कारण दिनों का फर्क मिटने लगा है। पता ही नहीं चलता कि रविवार है या आज सोमवार, 2022 में है या 2015 में अटके पड़े हैं या 2029 में आ गए। दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की मस्जिद के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। जो रूप था उसमें मस्जिद नहीं थी और इसके लिए जांच हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है जो अस्पताल में भर्ती था और कथित रूप से घटना के वक्त एक दूसरा व्यक्ति दूसरे राज्य में था। हिमाचल प्रदेश में धर्म संसद हुई जिसमें एक समुदाय के खिलाफ मारने काटने के नारे लगाए गए। ये सारे भाषण हिंदी मीडियम में हुए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत रद्द कर दी है। प्राइम टाइम के इस एंकर के लिए इन घटनाओं से रोज गुजरना हिंसा के बीच घिरे होने जैसा लगता है। हिंदी मीडियम के बच्चों और युवाओं के हाथ में देसी कट्टे और जुबान पर दूसरे धर्म को गालियां देखकर दहशत हो जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत सेफ हैं, वे केवल ट्विटर पर सपोर्ट कर कोचिंग में चले जाते हैं और उनके मां बाप व्हाट्सएप ग्रुप में खो जाते हैं। आज के भारत को इस सवाल की नजर से देखिए, यह एक भारत है या एक तरफा भारत है? सबका भारत है या एक तरफा भारत है? हम बारी बारी से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मुद्दे पर आएंगे, लेकिन आप हमारे साथ यहां आइए।
सारे अवरोधों को हटाते रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाते रहेंगे।
जहां रविवार को कानपुर के निराला नगर में हजारों की भीड़ जमा हुई जब इंग्लिश मीडियम इंडिया के लोग बैंक्वेट हॉल में शादी और दोस्तों के यहाँ लंच और डिनर पर व्यस्त थे, तब हिंदी मीडियम भारत के 6000 गांवों के बच्चे, किशोर, युवा इतनी तेज गर्मी में राम बनकर आए थे और देर शाम तक इस मैदान में रुके रहे। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 21 जिलों से बच्चे लाए गए जिन्हें राम और हनुमान की वेशभूषा में तैयार किया गया। भास्कर के अनुसार दिल्ली के कारीगर ताजुद्दीन ने विशालकाय पुष्पक विमान बनाया। कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने। दैनिक जागरण अखबार ने लिखा है कि रामोत्सव में कानपुर प्रांत के 6000 गांवों से आए लोगों ने लिया हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प। इस कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा रामोत्सव बताया जा रहा है, लेकिन राम राज्य की भी बातें हुई यहां, जाति भेद मिटाने की भी बातें हुई। यहां साध्वी रितंबरा ने कहा कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और इनमें से 2 बच्चे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को समर्पित कर दीजिए। लेकिन क्या इन बच्चों को पता था कि राम और हनुमान की वेशभूषा में लाकर उन्हें भविष्य की किस राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है? अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार निराला नगर के मैदान में सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है।
मैंने आपसे फिर एक निवेदन करना है कि भारतीयता के अभ्युत्थान के लिए, हिंदू चेतना के अभियान के लिए, यानी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटाते रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाते रहेंगे। और उसकी शर्त है, उसकी शर्त।
क्या यह कोई नई संविधान सभा आप देख रहे हैं जहां 6000 गांवों से बच्चे, किशोर, युवाओं को राम और हनुमान बनने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया जा रहा है? क्या हम उस संविधान को जाता हुआ देख रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने खून पसीने बहाकर बनाया, और एक नए संविधान को आता हुआ देख रहे हैं जिसके लिए खून बहाने की तैयारी हो रही है? डू यू गेट माई प्वाइंट? आप बताइए कैसा भारत बनता हुआ देख रहे हैं, एक भारत या एक तरफा भारत, सबका भारत या एक तरफा भारत?
तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं, 2 संतानें नहीं, 4 संतानों को जन्म दीजिए और 2 संतानें राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक बनेंगे, वो बजरंग दल के बजरंग देव बनेंगे, वो विश्व हिंदू परिषद के समर्पित कार्यकर्ता बनेंगे, वो भारत की धूल को माथे पे लगाकर धन्य होंगे, राष्ट्र यज्ञ और मेरी माँ भारती अखंडता के सिंहासन पर विराजमान होगी, ये संकल्प कीजिए।
कानपुर से निकलने वाले अखबारों में रामोत्सव का खूब कवरेज किया गया है। लिखा है कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैयाजी जोशी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती, भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री मिलिंद परांडे और साध्वी रितंबरा भी थी। इसके अलावा आज के दैनिक जागरण में एक और खबर छपी है कि रविवार को लखनऊ के गांधी भवन में राज्य स्तरीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन संपन्न हुआ। इनमें शामिल संगठनों के नाम ही गिन लीजिए, गिनती का अभ्यास हो जाएगा। भगवा रक्षा वाहिनी, राष्ट्रीय भगवा युवा संघ, हिंदू जनसेवा समिति, विश्व हिंदू दल, जन उद्घोष सेवा संस्थान, सनातन संस्थान, हिंदू जनजागृति समिति सहित कई संगठन मौजूद थे, दैनिक जागरण ने लिखा है। यह भी लिखा है कि यहां पर मौजूद वक्ताओं ने 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। क्या इस संविधान ने हमें बराबरी, भाईचारा, अधिकार, आत्मसम्मान नहीं दिया? आखिर संविधान को लेकर संकल्प क्यों नहीं दोहराए जाते हैं? उन संस्थाओं पर सवाल क्यों नहीं हो रहा जो चलते तो संविधान के नाम पर हैं, मगर करते कुछ और हैं? हमारे संविधान निर्माता हिंदू राष्ट्र की बात को खारिज कर चुके थे। आजादी की लड़ाई के कई बड़े नायकों ने साफ साफ कहा, तब कहा जब देश बटा था और लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हिंसा के उस तपते माहौल में भी संविधान निर्माताओं ने अपने विवेक को संभाले रखा और हिंदू राष्ट्र की कल्पना के करीब तक नहीं फटके। जबकि पड़ोस का एक देश न सिर्फ धर्म के आधार पर बन रहा था बल्कि खुद को इस्लामिक राष्ट्र भी घोषित कर रहा था।
कर्नाटक श्री वजूभाई वाड़ा, माननीय राज्यपाल श्री, मध्य प्रदेश श्रीमती आनंदी बहन पटेल।
सरदार पटेल केवल हजारों करोड़ रुपए की मूर्ति नहीं है, केवल ऊंची मूर्ति नहीं है। अपने जीते जी सरदार ने हिंदू राष्ट्र को पागलपन भरा विचार कहा था। सरदार पटेल के नाम पर एकता की मूर्ति बनवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी सरदार के सपनों की खातिर ही इन संगठनों से चुप रहने की अपील कर सकते हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने का रोज संकल्प ले रहे हैं। राजमोहन गांधी ने पटेल की जीवनी पर लिखी किताब के पेज नंबर 497 पर 26 फरवरी 1949 के रोज छपी हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। सरदार पटेल बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हिंदू राज पागलपन भरा विचार है। प्रभात प्रकाशन से डॉक्टर प्रभात चोपड़ा की किताब छपी है, सरदार पटेल भारत विभाजन। इस किताब के पेज नंबर 103 पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट का जिक्र है। यह रिपोर्ट 5 मई 1950 के दिन छपी है। इसमें सरदार पटेल कहते हैं कि जब मैंने राज्य के कुछ लोगों को यह कहते सुना कि हिंदू खतरे में है, तब तो मैं भयभीत हुआ कि क्या हिंदू यहां से अदृश्य हो गए। एक हिंदू थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, वह गांधी जी थे। फिर भी एक हिंदू ही था जिसने उनकी हत्या कर दी, क्या यही हिंदुत्व है? सरदार पटेल कह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि क्या आप इसी तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं? आइए हम लोग अपने धर्म का अनुसरण करें और यदि हम उसका पालन ठीक तरीके से करें तब कोई खतरा नहीं। कोई भी धर्म जो असहिष्णुता पर आधारित है उन्नति नहीं कर सकता। यह कैसे हो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर संविधान की कल्पना, उनके सपनों का संकल्प लिया जाने लगता है और उसके ठीक 3 दिनों के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाने लगता है? क्या हम सबका भारत बनता देख रहे हैं या एक तरफा भारत बनता हुआ देख रहे हैं? स्क्रोल न्यूज की वेबसाइट पर अरुणाभ सैकिया की रिपोर्ट है कि उस दिन जहांगीरपुरी में 3 शोभा यात्राएं निकली, केवल तीसरी यात्रा के दौरान हिंसा हुई है। स्क्रोल की इस रिपोर्ट के साथ साथ अब आप दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना का वह बयान देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की मस्जिद वाले रूट की अनुमति नहीं ली गई। जो रूट मंजूर था उसमें मस्जिद नहीं थी। जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। आखिर देसी कट्टे और कटारों के साथ शोभा यात्रा बिना अनुमति के कैसे निकल गई? निकालने वालों का इरादा क्या रहा होगा? मुकेश सिंह सेंगर और सुकीर्ति की रिपोर्ट देखिए।
हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें बालिक लड़कों के साथ साथ नाबालिग बच्चे भी हैं जिनके हाथ में हथियार हैं। आप पिस्तौल से लेकर तलवार तक देख सकते हैं, लेकिन हम उन नाबालिगों के चेहरे नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसा करने की कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या नाबालिग बच्चों को इसलिए हथियार दिए गए कि गिरफ्तार भी हुए तो जल्दी जेल से छूट जाएंगे? आखिर तलवार, चाकू, देसी कट्टे और डंडे के साथ शोभा यात्रा क्यों निकाली गई? क्या देसी कट्टों से किसी धार्मिक यात्रा की शोभा बढ़ती है? यही शोभा यात्रा जब जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की इस मस्जिद के सामने से गुजरी तो हिंसा शुरू हो गई।
ये जब हिंदू लोग आ रहा था, तीन गाड़ी लेके आ रहा था इधर से, कोई मुसलमान भाई कुछ नहीं बोला, तो ये लोग यही गाड़ी खड़ी कर दिया। जब कुछ आदमी लाके ऐसा ऐसा धक्का मार रहा था, तो यहाँ झंडा करने के लिए ये लोग उतर गया था, वहाँ चढ़ गया था। अच्छा। ये दोनों जो हमारा मुसलमान भाई पत्थर फेंका था, वो लोग भी पत्थर फेंक रहा था, तो दोनों तरफ से तो ये लड़ाई विवाद हो गया। तो उसको भगाने के लिए जो वो भाग जाए, हम क्यों करने देंगे ये झंडा? हमारे तो घर के पास ये हिंदू है, मुसलमान भाई है, सब भाई भाई हम लोग रहते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हिंसा शुरू हुई तब वहाँ पुलिस बहुत कम संख्या में मौजूद थी। देखते ही देखते दोनों ही पक्षों में जबरदस्त पथराव शुरू हो गया। आगजनी हुई, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, दुकानों को लूटा गया। अकबर ने दुकान बंद कर घर के अंदर छिप कर किसी तरह जान बचाई।
अकबर, फायरिंग की आवाज सुनी थी आपने?
जी, आवाज तो आ रहा था काफी, पर मैं ये नहीं देखा कहाँ से हो रहा है, कौन चला रहा है। मैं अपने घर के अंदर छुप गया डर के मारे। अच्छा। बेकार है, कोई पथवार कर रहे हैं, किसको क्या लग जाए। मेरे बच्चे हैं, बीवी है, तो घर का मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मैं इतने कुछ देखा नहीं, उतना वो किया नहीं, मैं घर के अंदर अपने घुस गया।
इसी भीड़ में नीले कुर्ते में ये युवा गोली चलाते दिखता है। इसका नाम सोनू चिकना बताया गया है। ये हिंसा करीब आधे घंटे चली। जब पुलिस के सीनियर अधिकारी ज्यादा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तब हालात पर काबू पाया गया। मस्जिद के लोग कहते हैं कि शोभा यात्रा के लोग भीतर घुस गए और तोड़फोड़ की। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का कहना है, पहले मस्जिद से पत्थर बरसाए गए, उनकी कोई गलती नहीं थी।
उस समय जो पुलिस थी हमारे साथ, जो जुलूस के साथ जो गाड़ी वो थी पुलिस की, जिप्सी, एक जिप्सी थी और तीन चार पुलिस वाले थे, ज्यादा संख्या में थे नहीं, तो उस समय तक पुलिस नहीं आई है। बाद में जब पुलिस बल आया है, काफी संख्या में जब पुलिस आई है, फिर उसके बाद ये लोग शांत हुए। लेकिन फिर भी लगभग 10-10:30 बजे तक भी लोग सब हुजूम लगा करके यहीं खड़े थे, हम लोग पीछे हो गए थे।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि शोभा यात्रा के लिए इजाजत नहीं ली गई थी, लेकिन क्या पुलिस को खबर नहीं थी कि देसी कट्टे तलवारें लेकर इलाके में शोभा यात्रा निकल रही है? ये लोग कौन हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंसा के इरादे से पुलिस की नजर से बचाकर शोभा यात्रा निकाली गई?
सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है, उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है।
अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ही कह रहे हैं कि शोभा यात्रा की इजाजत नहीं थी, तब क्या उसके आयोजकों और देसी कट्टे के साथ शामिल लोगों को इस तरह से उठाकर पुलिस वाले टांग कर ले जाएंगे? जैसे इस शख्स को पुलिस टांग कर ले जा रही है, जो थाने जाने से इनकार कर रहा है, रो रहा है कि वह बेकसूर है। जहांगीरपुरी हिंसा में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 8 पुलिसकर्मी हैं। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा के हाथ में गोली लगी है। उनका कहना है कि लोग तलवार लहरा रहे थे, भीड़ में फायरिंग भी हो रही थी, 7-8 राउंड फायरिंग हुई और उसी में एक गोली उनके हाथ में लग गई। मीणा की जान खतरे से बाहर है।
जो झगड़ा शुरू हुआ था वो शुरू क्यों हुआ, कौन लोग शामिल थे उसमें?
ना, वो पहले आगे क्या बहस हुई वो उसका पता नहीं, लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बसा बढ़ गया जब फिर आगे आगे थे। अच्छा। आगे आगे हमारे अफसरों ने भी और हमारे स्टाफ ने उनको समझा दिया, बीच में घुस गए। नहीं, अगर यदि हम स्टाफ इतना नहीं होता तो वहाँ ज्यादा इंजर्ड हो जाते जो पब्लिक के।
दिल्ली पुलिस ने दंगा फैलाना, आगजनी और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर अभी तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं, इनमें 15 लोग एक ही समुदाय के हैं। आरोपियों के पास से 3 देशी कट्टे और 5 तलवारें बरामद हुई हैं। पुलिस पर यह आरोप लगे कि एक ही पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यह पक्षपात है। पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि दिल्ली पुलिस जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती।
FIR पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं।
कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं, बोलो किस तरह आपने ले रखा है इसमें, क्यों क्यों बताओ, आपको डर है किसी से, तुम्हें किस लिए बेटा, सब भाई भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो।
गिरफ्तार लोगों में अंसार को लेकर विवाद है। इस वीडियो में अंसार एक नाबालिग बच्चे को बता रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, हाथ में हथियार लेकर चलने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो अंसार की पत्नी सकीना ने दिया है। दिल्ली पुलिस इस अंसार को मुख्य आरोपी बता रही है। पुलिस का दावा है कि अंसार 4-5 लोगों को लेकर भीड़ में आया और झगड़ा शुरू कर दिया। अंसार पर पहले के भी कुछ केस दर्ज हैं। इसके अलावा असलम नाम का शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के मुताबिक असलम ने फायरिंग की जिसमें एक गोली मेदा लाल को लगी।
जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ड्यू लीगल एक्शन है वो प्रोफेशनल और फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे। FIR में जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है।
अब पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि शोभा यात्रा की इजाजत नहीं ली गई, तब क्या इसके आयोजकों को मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। अंसार की पत्नी सकीना और हिंदू पड़ोसी उसके पक्ष में आ गए हैं। उनका कहना है कि अंसार की झगड़े में कोई भूमिका नहीं है, अंसार तो लोगों को समझाने गया था।
तब बजा 6:30 बजा चुका था, तब मुझे कहता मनी खाना निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगे। इतना में मैं ऊपर खाना निकालने गया तो देखूं तो बाजार से फोन आया कि भाई आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर बहुत मारामारी हो रहा, आप आ जाओगे तो थोड़ा मॉल ठंडा हो जाएगा।
सोमवार को फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मौके पर पहुँच कर कई घरों से सड़क से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। यहाँ तक कि वो उस मस्जिद में भी गए जहाँ झगड़े की शुरुआत हुई। फॉरेंसिक टीम करीब 1 घंटे तक मस्जिद में रही। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की 14 टीमें लगाई हैं और सोमवार को फायरिंग करने वाले सोनू चिकना के घर जब पुलिस उसके घर वालों से पूछताछ करने पहुंची तो घर वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके घर वाले भी उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी के अलावा सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। दोनों समुदायों के बीच बैठकें हो रही हैं। कुल मिलाकर इलाके में शांति बहाल होती दिख रही है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ये तस्वीरें जामिया नगर और जसोला विहार की हैं।
2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो भयानक दंगे हुए थे उन दंगों की जांच को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बार बार फटकार लगाई थी। अब ये उम्मीद की जाए कि हिंसा के इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच सही दिशा में होगी जिससे साफ हो कि इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ में मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
नफरती भाषणों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, टिप्पणियां हैं, लेकिन इसका दौर नहीं रुक रहा। धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे लोगों के वीडियो हैं जिनमें वे खुलेआम हथियार उठाने और हिंसा करने का प्रवचन दे रहे हैं। इन्हें हम दिखा तक नहीं सकते लेकिन ऐसे लोगों का बोलना रुक नहीं रहा। हिमाचल के ऊना में धर्म संसद का आयोजन हुआ और मुसलमानों के खिलाफ जमकर भाषण दिए गए, टारगेट किलिंग तक की बात कही गई। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए।
आवश्यकता अभी ये आन पड़ी है कि सनातनियों को देखते ही हमला करना पड़ेगा।
मैं तो कहना चाहता हूं केवल 7 साल के बाद जैसे भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा भारत अखंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत के अखंड होने की बाधा एकमात्र ये हिंदुओं की आबादी है। जैसे जैसे ये हिंदुओं की आबादी खत्म होती चली जाएगी भारत अखंड होता चला जाएगा। जब तुम किसी के लिए नहीं रो रहे तो ये भी तय समझो कि जिस दिन तुम्हारे साथ कोई गलत काम होगा तुम्हारे लिए भी कोई रोने वाला नहीं मिलेगा।
जिस पढ़ा करके आज मुसलमान अपने आप को जिहादी और संगठित और कत्लेआम मचा रहा है, वो बेसिकली वो किताब उनकी है ही नहीं, उनके साथ भी छल कपट किया गया। ये बात जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने खुद बताई।
ये सभी नफरत भरे भाषण हिमाचल प्रदेश के ऊना में बेल पर बाहर यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित धर्म संसद में दिए गए। दिलचस्प बात तो ये है कि यति नरसिंहानंद हरिद्वार में ऐसी कथित धर्म संसद में नफरती भाषण देने के लिए गिरफ्तार हुआ था। यति नरसिंहानंद जमानत पे बाहर है और जमानत की शर्त में साफ लिखा है कि नरसिंहानंद ना तो नफरती भाषण देगा और ना ही ऐसे किसी आयोजन में हिस्सा लेगा जहां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषण दिए जा रहे हों। लेकिन नरसिंहानंद खुलेआम न्यायालय का मजाक उड़ाते हुए जमानत के नियमों का उल्लंघन करते हुए नफरत भरे भाषण दे भी रहा है और ऐसे आयोजन भी कर रहा है। ये इस धर्म संसद के आयोजकों में से एक सत्यदेव सरस्वती हैं, जिनका कहना है कि उन्हें भारत के कानून पर भरोसा ही नहीं है और सभी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए।
मेरी बात सुनिए, भगवान श्री
कानून पर यकीन नहीं,
कानून अगर कानून अपना कार्य करता तो हम लोग क्यों ये धर्म संसद करते। हमारी बच्ची मारी गई, किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला।
हिमाचल पुलिस इस पूरे आयोजन से नदारद रही। बस आयोजकों को एक नोटिस दिया गया जिसमें लिखा है कि इस धर्म संसद में किसी समुदाय और जाति विशेष के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस की चेतावनी को अंगूठा दिखाते हुए जमकर नफरत भरे भाषण दिए गए। सुप्रीम कोर्ट इस धर्म संसद को लेकर हिमाचल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है।
प्रशासन को पता है कि इस धर्म संसद की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को है, फिर भी धर्म संसद में एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। जबकि जवाब देना है प्रशासन को कि इस धर्म संसद में क्या हेट स्पीचेस नफरती भाषण दिए गए या नहीं। ऊपर से प्रशासन पत्रकारों से पूछ रहा है कि क्या नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, तो सोचिए कि प्रशासन कितना ढील दिए हुए है। हिमाचल प्रदेश जो शांत रहा है वहां भी नफरती भाषण दिए गए, खुलेआम अदालत का मजाक उड़ाया गया। सहयोगी पवन कुमार के साथ ऊना से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
किसी के खिलाफ नारे लगाना, गालियां देना, मजहब के आधार पर गालियां देना, यह ठीक नहीं है, बंद होना चाहिए। जब हिंसा हो जाती है तब पहले कौन बोला, बाद में कौन बोला के नाम पर टीवी में डिबेट उत्पादन किया जाता है, डिबेट का उत्पादन होता है। यह भारत की असली जीडीपी है। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने केंद्रीय मंत्री अभय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर जो फैसला दिया है वह सिर्फ एक मामले से संबंधित फैसला नहीं है, बल्कि जमानत को लेकर अपनाई जा रही अदालती प्रक्रियाओं पर भी एक गंभीर सवाल खड़े करता है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि इस केस में जो पीड़ित पक्ष है उसे सुना ही नहीं गया, उसे सुनवाई के अधिकार से वंचित रखा गया। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जस्टिस राजीव सिंह ने आशीष मिश्रा को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अभियुक्त को जमानत देने और सुनवाई करने में हाई कोर्ट ने हड़बड़ी दिखाई है। एसआईटी ने इस फैसले के खिलाफ 2-2 बार अपील करने के लिए कहा, लेकिन यूपी सरकार ने अपील नहीं की। यूपी सरकार ने 1.5 महीने बाद जमानत की अपील की, तब तक प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुके थे। एसआईटी ने यह भी लिखा कि अर्जेंट अपील करनी चाहिए क्योंकि इससे चश्मदीदों को खतरा हो सकता है। प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, उनकी जीत हुई।
बीते साल अक्टूबर की ये तस्वीरें अब भी डराती हैं।
प्रदर्शन के लिए खड़े किसानों को कुचलती हुई एक जीप निकल गई। इस घटना के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जिस तरह राज्य सरकार बचाने में लगी दिखी, उससे ये डर पैदा हुआ कि इस मामले का इंसाफ भी कुचला न जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक बार फिर सलाखों के पीछे भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 फरवरी के जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। उसे एक हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है।
मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे।
धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने निष्पक्षता से न्याय किया है। धन्यवाद देता हूं उन वकील साहबों का जो ईमानदारी से हम लोगों के साथ में खड़े रहे और हमारे केस को मजबूती दी। धन्यवाद देता हूं उन सभी साथियों का जो इस केस की पैरवी के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी की मेरिट पर निष्पक्ष और संतुलित ढंग से विचार कर 3 महीने में फैसला करे। हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक चीजों को महत्व दिया। एफआईआर को घटनाओं का इंसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। कोर्ट को सबूतों का मूल्यांकन करने से बचना चाहिए क्योंकि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। हाईकोर्ट को पोस्टमार्टम आदि में नहीं जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने पीड़ितों को अधिकार से वंचित किया। पीड़ितों को सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई, अप्रासंगिक विचार रखे और मिसालों की अनदेखी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों पर हमले पर भी चिंता जताई है और कहा है कि अगर ये सही है तो ये अधिकारियों के लिए जागने का वक्त है।
लखीमपुर के बीजेपी दफ्तर में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो आशीष मिश्रा के बेल कैंसिलेशन ऑर्डर पर रिएक्शन दे पाया। हमें आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा जूनियर होम मिनिस्टर हैं और फरवरी में जब आशीष मिश्रा को बेल मिली थी इलाहाबाद हाईकोर्ट से, उसके अगले दिन से वो बीजेपी के कैंपेन में यहां लग गए थे और बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड यहां बरकरार रखा। 8 की 8 विधानसभा सीट जो हैं, इस बार भी चुनाव में इसी पार्टी ने जीती।
इस मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर जांच की निगरानी तक के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं।
हमें समय पर कहते रहे, राज्य सरकार को बार बार उडाटते भी रहे, कोई गलतियां होती थी बताते रहे, गवाहों की सुरक्षा की बात की, उन्होंने अपग्रेडेड एसआईटी बनाई और रिटायर्ड चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा के श्री राकेश कुमार जी के, उनका ये मानना था कि हमको न्याय देना है और आज उस न्याय को लोगों के बीच में आया और आज जो है उन्होंने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल कर।
क्या बोला है बेल कैंसिल करते हुए?
बेल कैंसिल करते समय उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट को जो है अपने जो है सीमा में रहकर निर्णय करना चाहिए था, अपने निर्णय में उनको जो है सीमा को पार नहीं करना चाहिए।
ये कैसा मामला है जिसमें यूपी सरकार की भूमिका शुरू से ही अजीबोगरीब रही है। पहले वो कहती रही कि वो जमानत का विरोध करती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील तक दाखिल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अजीबोगरीब बात की और कहा कि आशीष मिश्रा के भागने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता था कि जब तक वो दखल नहीं देगा आशीष मिश्रा जैसे रसूखदार आरोपियों को राहत मिलती रहेगी। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के आवेदन पर फैसला करते समय अदालत को सबूतों का मूल्यांकन करने या विस्तृत मूल्यांकन करने से बचना चाहिए। क्या ऐसा सभी मामलों में हो रहा है? अगर नहीं तो इसका मूल्यांकन कैसे होगा कि नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मामलों में सबूतों का विस्तृत मूल्यांकन हो रहा है और जमानत नहीं दी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के बारे में एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया और मामले को गुणदोष के आधार पर तय करने के लिए आगे बढ़ा दिया।
उन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये इसने जो अपराध किया है ये कितना गंभीर है, फिर आपको ये देखना होगा कि क्या इसके भाग जाने का कोई डर है, फिर आपको ये देखना होगा कि क्या ये विटनेस से टेम्पर कर सकता है, कितना असरदार आदमी है, कितना ताकतवर आदमी है और विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, करेगा क्या। हाई कोर्ट ने ये सब कोई बात नहीं देखी और इन सब चीजों को नजरअंदाज करके और फिर उन्होंने एफआईआर पर जोर दिया जबकि तब तक चार्जशीट फाइल हो चुकी थी जिसमें बहुत विस्तार से सब चीजें बोली गई थी। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि इसमें जो शिकायतकर्ता थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज करी, यानी कि जो किसान और उनकी फैमिली, जिन किसानों को मारा गया और जो जिनको चोटें आई उनकी फैमिली को भी हाईकोर्ट को सुनना चाहिए था। यहाँ पर तो जो एक जना जो हमारा क्लाइंट था जिसके बेटे को मारा गया, उन्होंने तो उनका वीडियो ऑफ हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने ये शिकायत दर्ज करी कि भाई हमको सुना नहीं गया, हमको सुना जाए, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने नजरअंदाज करके उनको बगैर सुने उसको आशीष मिश्रा को बेल दे दी। तो ये बहुत अहम फैसला है, इसमें बहुत सारी जो प्रिंसिपल्स हैं बेल के वो सारे ले डाउन करे गए हैं, फिर से रिइटरेट करे गए हैं, और उम्मीद है कि इस फैसले का आगे के केसों में भी असर पड़ेगा बेल देते समय। उधर दूसरे तरह के केसेस हैं जहां पर जैसे ये आनंद तुम्बले और यहाँ उमर खालिद वगैरह के जैसे केसेस, जो लोग सालों साल तक जेल में पड़े हुए हैं उनको बेल नहीं मिल रही, जबकि उनको बेल डिनाई करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ना तो कोई भागने का वो है, ना कोई विटनेस से टैम्पर करने की बात है, ना ही उनके कोई इतने गंभीर अपराध हैं। यहाँ तो इस केस में तो बहुत गंभीर अपराध भी था, विटनेस से टैम्पर करने की भी आशंका थी, भागने की भी आशंका थी आशीष मिश्रा के केस में।
हम अनगिनत बार इस हिंसा को गलत बता सकते हैं, बताते रहे हैं, लेकिन यह समाज हमारे सामने भी नजर मिलाकर कहेगा गलत है, मगर मानेगा वही जो हाउसिंग सोसाइटी, रिटायर्ड अंकिलों, एनआरआई अंकिलों और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में कहा जा रहा है। जो आप बाहर होता देख रहे हैं उसकी तैयारी इस तरह के ग्रुप में भीतर भीतर कई साल से हो रही है, दिन रात हो रही है। हिंदी मीडियम के युवाओं को तय करना है कि उन्हें अपने बुजुर्गों से कैसा भारत चाहिए, सबका भारत या एक तरफा भारत। बेहतर है अंग्रेजी सीख लीजिए और ब्रेक ले लीजिए।
देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 2183 नए कोरोना केस सामने आए, जो एक दिन पहले से करीब 90% ज्यादा हैं। 24 घंटे में कोरोना से 2 मौतें हुई, हालांकि जो मौतों का आंकड़ा जारी किया गया वो 214 है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आंकड़े में केरल में हुई 212 मौतों का पुराना आंकड़ा भी शामिल है। इनमें से 62 मौत कोर्ट के निर्देश के बाद घोषित की गई और 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच 150 मौतों की संख्या को जोड़ा गया। इस बीच एक्टिव मामलों की तादाद में थोड़ी कमी आई है। एक्टिव मामले 11,558 से घटकर 11,542 हो गए हैं। जिन शहरों में कोरोना के केस सबसे तेजी से बढ़े हैं उनमें दिल्ली सबसे आगे है, जहां 24 घंटे में कोरोना के 517 नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली में इस तरह कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1,518 हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों में दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों के छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस वजह से इन स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत शामिल हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए जल्द ही दिल्ली में भी मास्क को फिर अनिवार्य किया जा सकता है। गुजरात के वडोदरा में रविवार रात हुआ एक छोटा सा सड़क हादसा सांप्रदायिक झड़प में बदल गया। पुलिस के मुताबिक दो अलग अलग समुदायों के लोगों के 2 टू व्हीलर आपस में टकरा गए। इसके बाद जो बहस हुई वो झगड़े में बदल गई, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग शामिल हो गए। दोनों ही पक्षों की ओर से इसके बाद पत्थरबाजी हुई, कुछ गाड़ियों को तोड़ दिया गया। इस दौरान एक पक्ष की ओर से करीब के एक धार्मिक स्थल को नुकसान भी पहुंचाया गया। इस झड़प में 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घटना के सिलसिले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा झड़प से पहले हुई सड़क दुर्घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्घटना और दंगे के मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दायर की गई है। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने के प्रशांत किशोर के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही हैं, जिस पर विचार विमर्श के लिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस के कुछ चुने हुए नेताओं को एक बैठक में बुलाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस बैठक में शामिल हुई। प्रशांत किशोर ने 2024 के आम चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति पर काम किया है, जिसमें चुनी हुई 370 सीटों पर ही कांग्रेस को पूरा ध्यान केंद्रित करने का के लिए कहा गया है। बाकी सीटों पर अन्य पार्टियों से गठबंधन करने का प्रस्ताव इस रणनीति में रखा गया है। प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कांग्रेस अपने दम पर ही चुनाव लड़े, जबकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव में उतरा जाए। कांग्रेस के कुछ सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इस विचार से सहमत बताए गए हैं। कांग्रेस नेताओं की बैठक में प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने पर भी विचार हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस में दो तरह के विचार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का एक धड़ा प्रशांत किशोर को पार्टी में लेने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो कई ऐसे नेताओं और उनकी पार्टियों के करीब रहे हैं जो चुनाव में कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। आम जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही हैं और आए दिन सरकार की ओर से जारी होने वाले आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन यानी थोक महंगाई दर बीते चार महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। मार्च के महीने में थोक महंगाई दर 14.55% रही, जो फरवरी में 13.11% थी। अगर पिछले साल मार्च से तुलना करें तो थोक महंगाई दर इस मार्च में करीब दोगुनी हो चुकी है। महंगाई दर में इस तेजी के पीछे मुख्य वजह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई भारी तेजी है। इसके अलावा मूल धातुओं की कीमतें भी काफी ज्यादा बढ़ी हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई में आई बाधा की वजह से कच्चे तेल के दाम काफी बढ़े हैं, जिसका असर देश में महंगाई दर पर दिख रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। जनरल मनोज पांडे मौजूदा थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। अभी वो थल सेना के उप सेनाध्यक्ष हैं। जनरल पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले ऐसे अफसर होंगे जो थल सेना के प्रमुख बनेंगे।
और आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।